हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 20, 21 और 22। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधरुणबिंबफल धरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुंदरमुखात् अरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानि। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रै श्रवसे नमो नमः। किरातहोणा द्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाखसादया किन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है हृदय में भगवान, श्लोक नंबर 20। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को योगी जन किस प्रकार से अपने इस देह को त्यागते हैं उसकी परिक्रिया के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं, नाभ्याम स्थितम रेद्य धीरोप्यतस्मात् उदानगत्यो रसितम नयेन मुनि ततोनुसंधाय दिया मनस्वी स्वतालुमूलम शनकैर्नयेत नाभ्याम स्थितम रेद्य धीरोप्यतस्मात् उदानगत्यो रसितम नयेन मुनि ततोनुसंधाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलम शनकैर्नयेत। शब्दार्थ, नाभ्याम स्थितम हृदयो। नाभ्याम मतलब नाभि में से, स्थितम मतलब स्थित होता है हृदय में, यानी कि नाभि से हृदय की तरफ, और अधिरोप्य यानी उस उधर रख के, तस्मात उदान, उदान यानी ऊपर उठाते हुए, उसके बाद ऊपर से उठाते हुए गत्य उरसी आगे वेग से उसकी छाती की ओर उसकी गति, उसके बाद तम नयेत मुनि उसके पश्चात मुनि और मतलब ध्यानवान जो भक्त है उसको ततोनुसंधाय ध्या मनस्वी, ततो मन उनको अनुसंधाय खोज करने के लिए निकाले, ध्या यानी बुद्धि से, मनस्वी यानी ध्यानशील, और उसके बाद स्वतालुमूलम शनकैर्नयेत। स्वतालुमूलम यानी तालु के निचले भाग में शनकै धीरे धीरे नयेत लेके जाना चाहिए, मतलब ये मुनि जो है वो किस तरह से अपनी प्राण वायु को नाभि से ऊपर उठाता है। पहले कल बताया था ना, गुदा द्वार से उसको रोकना है, एक एक करके क्रमशः ऊपर उठाता है प्राणवायु को और तब शरीर का त्याग करता है, तो वो किस तरह से उठाता है वो आज बता रहे हैं। अनुवाद देखिए, ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालु के नीचे वाले भाग तक ले जाए, उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वायु की गति के 6 चक्र होते हैं। बुद्धिमान भक्ति योगी को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान लगाकर इन स्थानों को खोज निकाले। इनमें से उसके पूर्व जिस चक्र का उल्लेख है वह स्वाधिष्ठान चक्र या प्राणवायु का शक्ति आगार है, और इसके ऊपर नाभि के नीचे मणिपूर्वक चक्र है। जब हृदय में ऊपर स्थान की खोज की जाती है तो अनाहत चक्र मिलता है, और इससे भी ऊपर जब प्राणवायु को तालुमूल पर स्थित किया जाता है तो विशुद्ध चक्र मिलता है। तो यहाँ पर किस तरह से प्राणवायु को ऊपर उठाकर अज्ञा चक्र तक लेके जाते हैं उसका तरीका बताया गया है। तस्माद् भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत निरोध सप्ता यतनोनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुण्ठ दृष्टि निर्भिद्य मूर्धन विसजेत् परं गतः। तस्माद् भूर अंतर उन्नयेत, तस्मात मतलब वहां से भ्रुवो यानी भवों के अंतरम यानी बीच में उन्नयेत ले जाना चाहिए, यानी जब तालु के पास आया तो उसके भी ऊपर भ्रुवों के अंतर में, और निरुद्ध सप्त आयन, निरुद्ध मतलब रोक कर, सप्त मतलब 7, आयतन यानी प्राणवायु के बहिर्द्वार, जितने भी द्वार हैं 7 द्वारों को रोक कर, अनपेक्ष मतलब सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। योगी को कोई भी हृदय के अंदर भौतिक वासना नहीं रखनी चाहिए, अनपेक्ष किसी भी वस्तु के अंदर कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। स्थित्व रखकर मुहूर्त यानी क्षण भर में अधर्म आदा अंकुंठ भगवान के नाम वापिस, दृष्टि यानी जिसके जिसका ध्येय है, ध्येय मतलब जहाँ जो हमारा लक्ष्य है, निर्भिद्य भेद कर, मूर्धन यानी ब्रह्मरंध्र विसृजेत अपना शरीर त्याग दे। इस तरह से जब वो सारी वासनाएं त्याग दे और अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि जमा कर फिर अपना शरीर त्यागे तो परमगतः परमेश्वर की ओर वो परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है या भगवान का धाम प्राप्त कर सकता है। अनुवाद तत्पश्चात भक्ति योग को अपनी प्राण वायु दोनों भवों के मध्य लगाना चाहिए और तब प्राण वायु के साथों बहिर्द्वार को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरंध तक पहुंचना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से श्लोक को समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर सारे भौतिक बंधनों को त्यागने और अपने घर यानी भगवत धाम जाने की विधि संस्तुत की गई है। चाहे आप योगाभ्यास से कर रहे हो या किसी भी दूसरे तरीके से भगवत धाम जाने का प्रयास कर रहे हो, ज्ञान मार्ग हो, कर्म या मार्ग हो या बंद, सबसे पहले जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, भौतिक बंधनों से अनासक्ति। जब तक भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षण होगा तब तक भगवत धाम जाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर भी यही बताया, अनपेक्ष यानी किसी भी वस्तु के अंदर कोई आसक्ति नहीं होगी। तो यहाँ श्री प्रभुपाद इसलिए बता रहे इसकी शर्त यह है कि मनुष्य को पहले भौतिक भोग की इच्छा से पूरी तरह से मुक्त हो जाना चाहिए। आयु तथा इंद्रिय तृप्ति की मात्रा के अनुसार भौतिक भोग की कई कोटियां हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.20 में सबसे अधिक जीवनाविधि तक इंद्रिय भोग के सर्वोच्च धरातल का उल्लेख हुआ है। ये सारे के सारे भौतिक भोग हैं और मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि उसे ब्रह्मलोक तक की इतनी दीर्घ आयु की भी आवश्यकता नहीं होती, उसे भगवत धाम वापस लौटना ही होगा। उसे अत्यधिक भौतिक सुविधाओं से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.20 में भगवान बताते हैं, त्रैवेद्यामां सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाध्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्। त्रैविद्यामम यानी जो तीनों वेदों का अनुसरण करते हैं और उसके उपरांत वहाँ स्वर्ग लोक की प्राप्ति की घोषणा करते हैं, वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम, और फिर सुरेंद्र लोक यानी इंद्र के पवित्र स्वर्ग लोक धाम को प्राप्त करते हैं। और अश्नंति दिव्यान दिविदेव भोगवान, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। लेकिन उतना आनंद भोगने के पश्चात क्या होता है, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। भले ही तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम, वो विशाल विशाल समय तक स्वर्गलोक का भोग करते हैं लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसे वापस से इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। यहाँ तक क्या ब्रह्म भुवना लोक का पुनरावृत्ति नोर्जुन। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसे भगवत धाम वापस लौटना ही होगा, क्योंकि वो भले ब्रह्म लोक तक कितनी दीर्घ आयु प्राप्त कर ले लेकिन वो वापस से पृथ्वी पर आएगा और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को भोगना पड़ेगा। इसलिए उसे वास्तव में भगवान के धाम जाने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, उसे अत्यधिक भौतिक सुविधाओं के से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 2.41 में कहा गया है, सॉरी 49 में कहा गया है, दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। भगवान कहते हैं धनंजय भौतिक जितनी भी वस्तु हैं उनके फलों को भक्ति के द्वारा समस्त गृहित कर्मों को दूर रहना चाहिए और उसी भाव से भगवान की शरण में लेना शरण में जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों के फलों को भोगना चाहता है वो तो मूर्ख है, वो तो कृपण है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि 2.49 में कहा गया कि ऐसी भौतिक विरक्ति तभी प्राप्त की जा सकती है जब मनुष्य जीवन की परम संगति से परिचित हो जाए। परम दृष्टवा निवर्तन्ते, सॉरी मैंने रोंग ना श्लोक पढ़ा है, ये 2.59 है जिसमें भगवान बताते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो भगवान बता रहे हैं कि वैसे तो देहधारी जीव जो है इंद्रिय भोग में बहुत ही लगा हुआ होता है, भले ही निवृत्त होता है पर उसमें इंद्रिय, और जब वो उसको निवृत्त कर देता है इंद्रिय भोग को छोड़ देता है फिर भी उसके अंदर इंद्रिय भोग की वासना बनी रहती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य, इच्छा तो रहती है लेकिन अगर परम दृष्टवा निवर्तते, अगर उत्तम रस के अनुभव कर लेगा तो फिर ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाएगा। तो क्या करना है, भौतिक कृत्रिम विधि से भौतिक भोगों को रोकने का प्रयास नहीं करना है बल्कि अगर हम भगवान की भक्ति में अग्रसर बनेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद खाएंगे और भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे हम भजन क्रिया को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे भौतिक आनंद की सारी परिभाषा बदल जाएगी। हमें ऐसा लगेगा जिन वस्तुओं को हम आनंद समझते थे वही वस्तुएं अब हमें कष्ट देने लगेंगी। ऐसा लगेगा कि नहीं, ये भौतिक आनंद मुझे सुख नहीं दे रहा है, मजा नहीं आ रहा है, अब मुझे भगवान की प्रेम भक्ति चाहिए। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि योगी भौतिक आनंद को छोड़ देता है, निरपेक्ष हो जाता है, तो वो तो कृत्रिम विधि से इसको छोड़ने के प्रयास करता है लेकिन भक्त से वो तो सब छूट जाता है खुद ब खुद। जब भक्ति करते हैं तो वैराग्य खुद ब खुद उत्पन्न हो जाता है। इसी श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं परम दृष्टवा निवर्तते, जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति को पूरी तरह से समझ नहीं लेता तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। निर्विशेषवादियों की एक श्रेणी द्वारा यह प्रचार करना कि आध्यात्मिक जीवन सभी प्रकार की विविधता से शून्य है घातक है और जीवों को बहका कर अधिकाधिक भौतिक भोग की ओर ले जाने वाला है। यानी कि निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी आनंद नहीं, मतलब केवल कोई विविधता नहीं है, कुछ रस नहीं है, तो फिर वो क्या सोचते हैं कि आनंद तो फिर इस भौतिक जगत में है, तो फिर अधिकाधिक भौतिक भोग की ओर आने का प्रयास करते हैं। फलस्वरूप अल्पज्ञ लोगों को परम या परमेश्वर की कोई धारणा नहीं हो पाती है, वे अपने आप को ब्रह्म सिद्ध जीव कहकर भले ही मन को बहला लें किंतु वे नाना प्रकार के भौतिक भोगों से चिपके रहना चाहते हैं। मतलब अब जीव आत्मा का वास्तविक लक्ष्य है प्रेम प्राप्त करना लेकिन वो प्रेम तो उनको मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है भगवान को, तो वो ब्रह्म सिद्ध बन जाते हैं लेकिन फिर भी हृदय के अंदर कुछ इच्छा रह जाती है भोगों के लिए और ऐसे अल्पज्ञों के पास परम की कोई अवधारणा नहीं हो सकती है। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है अतएव वे परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते। भक्तों को आध्यात्मिक जगत यानी भगवान तथा वैकुंठ लोक कहलाने वाले असीम लोकों में उनकी दिव्य संगति का पूरा पूरा ज्ञान रहता है। भक्तों को पता होता है कि भगवान अपने धाम में रहते हैं और हम भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं, भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। तो आगे कहते हैं यहाँ पर अकुंठ दृष्टि का उल्लेख हुआ है। अकुंठा या वैकुंठ का एक ही भाव है और जिस किसी ने भी आध्यात्मिक जगत तथा भगवान के साथ साक्षात संगति को अपना लक्ष्य बना दिया है केवल वही इस भौतिक संसार में रहते हुए भी अपने भौतिक बंधनों को त्याग कर सकता है। यानी कि जिसको पता चल जाए कि मेरा लक्ष्य क्या है, भगवान के धाम में जाना और भगवान के साथ अपने टूटे हुए संबंध को पुनः निर्माण करना, जब उसका लक्ष्य क्लियर होगा तो फिर वो भौतिक बंधनों को त्याग देगा। उसको पता चलेगा कि ये तो सारे जितने भी संबंध है वो मेरे देह के हैं, मेरा आत्मा का संबंध, मैं स्वयं आत्मा हूँ और मेरा संबंध केवल कृष्ण से है। यह परम शब्द तथा श्रीमद् भगवत गीता में कई स्थानों में आया हुआ परम धाम शब्द एक ही है। जो भी परम धाम को जाता है वह कभी इस भौतिक जगत को लौट कर नहीं आता। ऐसी मुक्ति भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक को प्राप्त करने पर भी नहीं मिल सकती है। ये जहां पर जो परम शब्द श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि निर्भिद्य मूर्धन विसृजेत परम गता, कि जब जीव को समस्त आसक्ति समाप्त हो जाती है और परम गति को प्राप्त करता है, तो ये परम गति कौन सी है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यत कत्वा नानिवर्तन्ति तद्धाम परमम ममा, वो भी परम धाम और ये परम वही है। और यहाँ पर पता है ऐसी मुक्ति भौतिक जगत के सर्वोच्च लोकों को प्राप्त करने पर भी नहीं मिलती, किसी भी लोक पे चले जाएंगे। भगवान ने कहा 8.16 में पुनरावृत्ति नो अर्जुन। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प्राणवायु 7 छिद्रों द्वारा निकलती है। प्राणवायु जो योगी जन रोकते हैं उनके विषय में बता रहे हैं 7 छेद हैं जिनसे वो निकल रही है। कौन कौन से? 2 आंखें, 2 नथने, 2 कान तथा 1 मुंह। सामान्यता मनुष्य की मृत्यु के समय यह वायु मुंह से होकर निकलती है, किंतु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि जो योगी प्राण वायु को अच्छी तरह से वश में करता है वह सिर में ब्रह्मरांध को भेद कर प्राण वायु को त्याग करता है। अतएव योगी उपर्युक्त 7 छिद्रों को बंद कर देता है जिससे प्राण वायु सहज ही ब्रह्मरंध्र से होकर फूट निकले। यह महान भक्त के भौतिक बंधन त्यागने का निश्चित चिन्ह है। तो वो क्या करते हैं, जो बहुत ज्यादा योगी होते हैं ना, वो इन जो 7 द्वार हैं उनको भी बंद कर देते हैं और तालों के बाद भवों तक लेकर आते हैं प्राण वायु। और जो ऊपर जो हम ये ऊपर हिस्सा है ना जो सर का ब्रह्मरंध्र इसको बोलते हैं, इधर से इसका प्राण वायु निकलता है और ये बहुत ही महान भौतिक बंधन त्यागने का बहुत ही कठिन अभ्यास के द्वारा योगी इस ऐसा कर सकते हैं और निश्चित रूप से उनको ये भौतिक बंधन से मुक्त होकर भगवान का धाम प्राप्त होता है। योगियों के लिए जो गति होती है उनके ब्रह्म ज्योति इत्यादि जो भी होता है वो उनको प्राप्त होता है। अब लेकिन ये हो तभी सकता है जब उसके हृदय में भौतिक कोई इच्छा नहीं। ये साफ साफ यहाँ पर बताया निरुद्ध सप्तायतनोन अपेक्षा, 7 द्वारों को बंद करेगा और किसी भी भौतिक वस्तु की ओर उसका कोई आकर्षण नहीं होगा। तो योगियों के लिए ऐसा करना बहुत कठिन है क्योंकि भौतिक जगत में हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं हृदय का आकर्षण रहता है, लेकिन भक्तों के लिए बहुत सहज है क्योंकि भक्त भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं और जैसे जैसे भगवान के साथ उसका संबंध जुड़ता है तो रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवान के रस का आनंद जब आ जाता है, उत्तम रस को जब वो आस्वादन कर लेता है फिर उसको भौतिक रस अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं और वो पूरा का पूरा चाहे वो इस संसार में हो किसी भी कोई भी स्थिति में हो मृत्यु के समय में भी डायरेक्ट से उसका मन जो है वो भगवान के अंदर लगता है। और ये तभी संभव है जब हम अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारा मन भी भगवान की सेवा में लगेगा और बुद्धि भी भगवान को प्राप्त करने के लिए सदैव योजना बनाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। ऐसा कहते हैं कि जिससे आप सुनते हो ना उसको कुछ देना चाहिए और मुझे बहुत जरूरत है आपकी प्रार्थनाओं की। आप कृपया मेरे लिए प्रार्थना करा कीजिए कि मैं अपनी सेवा को अपनी साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।